एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी किताब के विचारों में थोड़ी गहराई तक उतरेंगे जिसने लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है।
बिल्कुल, आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉन मिग्युल रुइज की विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द फोर अग्रीमेंट्स पर। ये किताब देखिए, सुनने में शायद थोड़ी आध्यात्मिक सी लगे।
हाँ, लगती है,
पर इसका जो सार है वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हमारे रिश्तों और सबसे बढ़कर खुद के साथ हमारे रिश्ते पर सीधा लागू होता है।
और यही बात इसे आज के समय में मतलब बहुत जरूरी बना देती है। हम सब कहीं ना कहीं तनाव, थोड़ी बहुत आत्म आलोचना और कभी कभी रिश्तों में उलझनों का सामना तो करते ही हैं, है ना?
हाँ, करते तो हैं।
तो ये किताब प्राचीन टॉल्टेक ज्ञान के आईने में हमें दिखाती है कि कैसे हम अनजाने में खुद पर ही कुछ जैसे सीमाएं लगा लेते हैं।
हाँ, जैसे कोई अदृश्य धागे हों जो हमें बांधे रखते हैं, और किताब का वादा है कि ये हमें उन धागों को पहचानने और काटने का तरीका सिखा सकती है, ताकि हम ज्यादा स्वतंत्र, ज्यादा खुश महसूस कर सकें।
बिल्कुल।
तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं लेखक डॉन मिग्वेल रुइस को थोड़ा बेहतर जानकर। इनकी कहानी भी सुनाए काफी दिलचस्प है।
हाँ, बहुत दिलचस्प। डॉन मिग्वेल रुइस मेक्सिको के लेखक और आध्यात्मिक शिक्षक हैं, लेकिन उनकी जड़ों में शमान परंपरा है। उनका परिवार वो पारंपरिक चिकित्सकों का था। उनकी माँ एक क्यूरांडेरा मतलब पारंपरिक वैद्य थीं, और उनके दादा एक नागवाल थे।
नागवाल वो क्या होता है?
मतलब ज्ञान और शक्ति के संरक्षक, एक तरह के शमान कह सकते हैं आप।
अच्छा, लेकिन कमाल की बात यह है कि उन्होंने शुरुआत में इस विरासत को नहीं अपनाया था, वो तो डॉक्टर बन गए थे।
हाँ बिल्कुल, वो आधुनिक विज्ञान की राह पर चले और एक सफल न्यूरोसर्जन बन गए। सोचिए, दिमाग की जटिलताओं को समझने वाले डॉक्टर।
सही कहा। और फिर कहते हैं जिंदगी में मोड़ आते हैं।
हाँ, एक नाटकीय मोड़ आया, एक लगभग जानलेवा कार दुर्घटना। कहते ना, कभी कभी ऐसे झटके हमें जगा देते हैं, और इस अनुभव ने उन्हें वापस अपनी जड़ों की ओर, अपने पूर्वजों के उस प्राचीन टॉल्टेक ज्ञान की ओर मोड़ा।
तो ये तो एक बड़ा ही अनोखा संगम हुआ, एक सर्जन का लॉजिकल वो विश्लेषणात्मक दिमाग और एक शामान की गहरी आध्यात्मिक समझ।
बिल्कुल,
शायद यही वजह है कि वो मुश्किल लगने वाली आध्यात्मिक बातों को इतने सरल और तर्कसंगत तरीके से समझा पाते हैं। मतलब आसानी से समझ आ जाती हैं।
निश्चित रूप से वो मानो आधुनिक सोच और प्राचीन ज्ञान के बीच एक पुल का काम करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि ये ज्ञान सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं, बल्कि आज भी हमारे मन को समझने और उसे बेहतर बनाने के कारगर तरीके हैं। जैसे उन्होंने शरीर को सर्जरी से ठीक किया, वैसे ही अब वो शब्दों से मन को ठीक करने का रास्ता दिखाते हैं।
वाह, ये तो वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है। तो अब आते हैं किताब पर, द फोर अग्रीमेंट्स। ये चार समझौते आखिर हैं क्या, और किताब का मूल विचार क्या है?
देखिए, संक्षेप में कहें तो ये किताब व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाने के लिए एक, आप कह सकती हैं, प्रैक्टिकल गाइड है। और इसका मुख्य तर्क ये है कि हम इंसान अपना ज्यादातर दुख खुद ही पैदा करते हैं, अनजाने में।
खुद पैदा करते हैं, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, मतलब कैसे?
किताब के अनुसार बचपन से ही समाज, परिवार, स्कूल, ये सब हमें कुछ नियम, कुछ मान्यताएं सिखाते हैं। रुइज इसे पालतूकरण या डोमेस्टिकेशन कहते हैं।
पालतूकरण जैसे जानवरों का होता है?
हाँ, कुछ वैसा ही। हम सीखते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा, क्या सही, क्या गलत। धीरे धीरे हम इन बाहरी नियमों को अपना लेते हैं और वो हमारे अंदरूनी समझौते बन जाते हैं, मतलब हमारे गहरे विश्वास।
अच्छा, तो ये वो मान्यताएं हैं जिनके आधार पर हम दुनिया को देखते हैं और खुद को आंकते हैं।
बिल्कुल। और दिक्कत तब होती है जब ये समझौते डर पर आधारित होते हैं। सजा का डर, काबिल ना होने का डर, दूसरों की राय का डर, इस तरह के डर। ये सारे डर मिलकर एक सामूहिक सपना रचते हैं जिसे रुइज ड्रीम ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। ये वो हकीकत है जिसे हम सब मिलकर जीते हैं, और अक्सर ये सपना एक बुरे सपने जैसा महसूस होता है जिसमें हम सब एक दूसरे को और खुद को जज करते रहते हैं।
और इस सपने को चलाने वाले हमारे अंदर भी कुछ किरदार होते हैं ना? किताब में आंतरिक न्यायाधीश और पीड़ित का जिक्र है, वो क्या है?
हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर एक हिस्सा होता है आंतरिक न्यायाधीश, इनर जज, जो लगातार हमारी गलतियां निकालता रहता है, हमारी आलोचना करता है, हमें बताता है कि हम काफी अच्छे नहीं हैं, ये ठीक नहीं किया, वो गलत था।
हाँ हाँ, वो आवाज तो सुनी है मैंने।
हम सबने सुनी है। और दूसरा हिस्सा है पीड़ित, विक्टिम, जो इस न्यायाधीश की सारी बातें मान लेता है, खुद को दोषी महसूस करता है, शर्मिंदा होता है और दुखी रहता है। ये दोनों मिलकर हमें उन्हीं पुराने दुखदायी समझौतों में फंसाए रखते हैं।
तो किताब का लक्ष्य हुआ कि इन पुराने डर वाले समझौतों को तोड़ा जाए और उनकी जगह नए, मतलब प्यार पर आधारित समझौते लाए जाए।
एकदम सही। किताब हमें चार नए शक्तिशाली समझौते अपनाने का सुझाव देती है। ये समझौते प्रेम, सत्य और आत्मसम्मान पर आधारित हैं। इन्हें अपनाकर हम अपने व्यक्तिगत सपने को बदल सकते हैं, अपनी निजी दुनिया को डर की जगह से प्यार की जगह बना सकते हैं, जिसे रुईज पृथ्वी पर स्वर्ग कहते हैं।
सुनने में तो बहुत आकर्षक लग रहा है, तो चलिए अब उन चार समझौतों में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। ये हैं क्या और इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है? पहला समझौता क्या है?
पहला समझौता है अपने वचन के प्रति निष्ठावान बने, बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। यहाँ इम्पेकेबल शब्द का मतलब है बिना पाप के।
बिना पाप के?
हाँ, लेकिन रुईज के लिए पाप का मतलब है ऐसा कुछ भी करना जो आपके खुद के खिलाफ जाए। तो वचन के प्रति निष्ठावान होना का मतलब है अपने भाषा का इस्तेमाल इस तरह करना कि वो आपको या दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए।
भाषा यानी हमारे शब्द, क्या वो इतने शक्तिशाली होते हैं?
किताब कहती है शब्द जादू हैं। वे या तो खूबसूरत सपने बना सकते हैं, जिसे वो सफेद जादू कहते हैं जब हम प्यार, सच्चाई और प्रोत्साहन के शब्द बोलते हैं,
अच्छा,
या सब कुछ तबाह कर सकते हैं। ये है काला जादू, जब हम कपशप, दोषारोपण, नफरत या आत्मालोचना के शब्द इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, किसी की कही एक कड़वी बात हमें सालों तक कैसे परेशान कर सकती है।
हाँ, ये तो सच है, कई बार ऐसा होता है।
और किताब गपशप को सबसे खराब काला जादू कहती है। ऐसा क्यों?
क्योंकि गपशप भावनात्मक जहर की तरह फैलती है। जब हम किसी के पीछे उसकी बुराई करते हैं तो हम नकारात्मकता फैलाते हैं, जो रिश्तों को खराब करती है, भरोसे को तोड़ती है। लेकिन ये समझौता सिर्फ दूसरों से कही बातों पर ही लागू नहीं होता।
बल्कि खुद से कई बातों पर भी। वो जो हमारा आंतरिक न्यायाधीश है, जो लगातार बड़बड़ाता रहता है। बिल्कुल, यही तो हमें खुद से भी ईमानदारी और प्यार भरे शब्द बोलने की जरूरत है। अपने अंदर की उस कठोर आवाज को पहचानना और उसे चुप कराना जो कहती है तुम काफी अच्छे नहीं हो या तुमसे नहीं होगा। पहला समझौता हमें अपने शब्दों की ताकत पहचानने और उसे सकारात्मक रूप से इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी देता है।
ये तो बहुत गहरा है, अपने शब्दों को साधना। ठीक है, अब दूसरे समझौते पर आते हैं, वो क्या है?
दूसरा समझौता है किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से ना ले, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली। ये शायद सबसे ज्यादा मुक्ति दिलाने वाला समझौता है।
इसका क्या मतलब है? अगर कोई मेरी आलोचना करे तो उसे व्यक्तिगत रूप से ना लूं, ये कैसे संभव है? बुरा तो लगता ही है।
हाँ, लगता है, लेकिन किताब का तर्क है कि दूसरे लोग जो कुछ भी कहते या करते हैं वो उनकी अपनी हकीकत, उनके अपने सपनों, उनके अपने समझौतों का प्रतिबिंब होता है। उनका व्यवहार उनके अपने अंदर चल रही कहानी का नतीजा है, उसका आपसे वास्तव में कोई लेना देना नहीं है।
सच में? मतलब?
हाँ, जब कोई आपकी तारीफ करता है तब भी वो अपने पैमाने से कर रहा है, और जब बुराई करता है तब भी।
तो अगर कोई मुझ पे गुस्सा है तो वो शायद अपने किसी और तनाव या डर की वजह से है, मेरे किसी काम की वजह से नहीं। ये नजरिया तो काफी अलग है, सोचने पर मजबूर करता है।
हाँ, और जब हम चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेते हैं तो हम मानो दूसरों के फेंके हुए भावनात्मक कचरे को अपना लेते हैं। हम उनके गुस्से, उनकी ईर्ष्या, उनके डर को अपने अंदर ले लेते हैं और दुखी होते हैं। इस समझौते का लक्ष्य है एक तरह की भावनात्मक ढाल, या कह लीजिए प्रतिरक्षा विकसित करना। दूसरों की राय चाहे अच्छी हो या बुरी, हमें अंदर से हिला ना पाए।
वाह, ये तो भावनात्मक स्वतंत्रता जैसा लगता है। मतलब अपनी खुशी के लिए दूसरों की मंजूरी पर निर्भर न रहना। मुश्किल होगा शायद, पर लगता है कोशिश करने लायक है। अच्छा, तीसरा समझौता क्या है?
तीसरा समझौता है धारणाएं न बनाएं, डोंट मेक अजम्पशंस। और ये हम सब शायद बहुत करते हैं।
तो मेरी आदत है मान लेना कि मुझे पता है सामने वाला क्या सोच रहा है या उसने ऐसा क्यों किया होगा, और फिर उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देना। कई बार गड़बड़ हो जाती है।
और अक्सर हमारी ये धारणाएं गलत निकलती हैं, है ना? हम बिना पूछे ही किसी के इरादों, भावनाओं या विचारों के बारे में कहानियां गढ़ लेते हैं और फिर उन्हें सच मानकर बैठ जाते हैं।
हाँ,
नतीजा, गलतफहमी, झगड़े, बेवजह का ड्रामा और दुख। हम सोचते हैं कि हमारे दोस्त या साथी को तो पता ही होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, और जब उन्हें पता नहीं होता तो हमें बुरा लगता है।
तो इसका हल क्या है? अगर धारणा ना बनाएं तो क्या करें?
हल है सवाल पूछने का साहस जुटाना, स्पष्ट रूप से संवाद करना, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो पूछें, अगर आपको कुछ चाहिए तो साफ साफ बताएं। धारणा बनाने से कहीं बेहतर है स्पष्टता मांगना। इसमें हिम्मत लगती है क्योंकि हो सकता है जवाब हमें पसंद ना आए, लेकिन ये हमें बहुत सारी काल्पनिक तकलीफों से बचाता है।
हिम्मत वाला काम तो है पर शायद जरूरी भी। ठीक है, और चौथा समझौता वो क्या कहता है?
चौथा समझौता है हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। ये समझौता बाकी तीनों को साधने में मदद करता है। ये एक तरह से गोंद का काम करता है जो सबको जोड़ता है।
हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें, इसका मतलब क्या परफेक्ट होना है, हर काम एकदम सही करना? ये तो बहुत दबाव वाला लग रहा है मुझे।
नहीं, बिल्कुल नहीं। किताब साफ करती है कि सर्वश्रेष्ठ का मतलब परफेक्शन नहीं है। हमारा सर्वश्रेष्ठ हर पल बदलता रहता है।
अच्छा, कैसे?
देखिए, जब हम स्वस्थ और ऊर्जा से भरे होते हैं तो हमारा सर्वश्रेष्ठ अलग होता है। जब हम थके हुए या बीमार होते हैं तो हमारा सर्वश्रेष्ठ अलग होता है। ये बस उस क्षण में, उन परिस्थितियों में अपनी पूरी क्षमता और ईमानदारी से प्रयास करने के बारे में।
अच्छा, तो ये परिणाम के बारे में नहीं बल्कि कोशिश के बारे में है, मतलब कोशिश पूरी करनी है।
हाँ, बिल्कुल। और जब आप जानते हैं कि आपने उस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है, तो आपके अंदर का वो न्यायाधीश आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। आपने पूरी कोशिश की।
सही बात है।
नतीजा चाहे जो भी हो, आपको पछतावा या आत्मग्लानी नहीं होगी। ये आपको खुद को कोसने से बचाता है। बस पूरी निष्ठा से कर्म करना है, फल की चिंता किए बिना, जैसा गीता में भी कहा गया है।
ये चार समझौते सुनने में तो सरल लगते हैं, पर लगता है इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। चलिए, अब थोड़ा रुककर सोचते हैं कि इस किताब से निकलने वाले मुख्य संदेश या थीम क्या है। एक जो मुझे साफ दिख रहा है वो ये कि हमारे समझौते ही हमारी हकीकत बनाते हैं। जैसे चश्मे से दुनिया का रंग बदल जाता है, वैसे ही हमारे विश्वास हमारे अनुभव को रंग देते हैं।
बिल्कुल। अगर हम मानते हैं कि दुनिया खतरनाक जगह है, तो हमें हर जगह खतरा ही दिखेगा। अगर हम मानते हैं कि लोग भरोसे के लायक नहीं, तो हमें धोखे ही मिलेंगे। विश्वास बदलना मतलब दुनिया को देखने का नजरिया बदलना।
और नजरिया बदलना मतलब अनुभव बदलना।
हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो असफल होने का डर हमें नई चीजें आजमाने से रोकता है। ये डर वाला समझौता हमारी हकीकत बन जाता है।
दूसरा बड़ा संदेश मुझे ये लग रहा है कि पालतूकरण दुख का स्रोत है। वो सारे नियम और मान्यताएं जो हमने बचपन में सीखे, खासकर डर पर आधारित, जैसे लोग क्या कहेंगे या गलती करना बुरी बात है, ये हमारी सहज खुशी और असलियत के आड़े आते हैं।
सही कहा। और अच्छी खबर ये है कि जैसे ये सीखे गए हैं, वैसे ही इन्हें भुलाया भी जा सकता है। हम होशपूर्वक चुन सकते हैं कि कौन से समझौते हमें रखने हैं और कौन से छोड़ने हैं। हम डर की जगह प्यार पर आधारित नए समझौते बना सकते हैं।
तीसरा थीम जो मुझे महसूस हुआ वो है भावनात्मक स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का। अक्सर हम अपनी भावनाओं के लिए बाहरी हालात या दूसरों को दोष देते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, ट्रैफिक जाम ने मेरा मूड खराब कर दिया, इस तरह की बातें।
हाँ, जबकि किताब कहती है कि बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन उन पर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है।
अच्छा।
हाँ, गुस्सा होना या शांत रहना, दुखी होना या स्थिति को स्वीकार करना, ये चुनाव हमारा है। ये हमें अपनी भावनाओं का मालिक बनाता है, उनका गुलाम नहीं।
और इन सबके केंद्र में शायद ये चौथा संदेश है। जीवन मूलतः प्रेम बनाम भय का चुनाव है। हमारे ज्यादातर पुराने सीखे हुए समझौते डर से चलते हैं। सजा का डर, अकेले रह जाने का डर, काफी न होने का डर।
और ये चार नए समझौते हमें हर पल प्यार को चुनने का निमंत्रण देते हैं। खुद के प्रति प्यार आत्मालोचना की जगह, सच्चाई के प्रति प्यार धारणाओं की जगह, दूसरों के प्रति सम्मानजनक प्यार गपशप या व्यक्तिगत हमले की जगह। हर स्थिति में हम पूछ सकते हैं, यहाँ प्यार भरा रास्ता कौन सा है।
ये तो जीवन जीने का एक बिल्कुल अलग नक्शा लगता है। किताब में कुछ ऐसी पंक्तियां भी होंगी जो इन विचारों को और भी यादगार बनाती हैं। कुछ खास कोट्स या विचार जो आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगे?
हाँ, कई हैं। जैसे शब्दों की शक्ति पर ये बात बहुत असरदार है। शब्द जादू हैं, वे सबसे खूबसूरत सपना बना सकते हैं या सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। ये हमें हर पल याद दिलाता है कि हम जो कहते हैं, खासकर खुद से, उसका कितना गहरा असर होता है। हमारी जबान हमारी दुनिया बना या बिगाड़ सकती है।
और वो कुछ भी व्यक्तिगत नहीं लेने वाला विचार, दूसरे जो कुछ भी करते हैं वो आपकी वजह से नहीं करते, वे अपने कारण करते हैं। ये तो जैसे एक कवच है, अगर कोई बुरा बर्ताव कर रहा है तो ये उसकी अपनी अंदरूनी लड़ाई का प्रतिबिंब है, मेरी कमी का नहीं। ये सोच कितनी शांति दे सकती है।
बिल्कुल। और धारणाएं ना बनाने पर, ये सीधी सी लेकिन बहुत गहरी बात। हम धारणाएं इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमें सवाल पूछने का साहस नहीं होता।
हाँ,
ये हमें आईना दिखाता है कि अक्सर हम स्पष्टता से क्यों कतराते हैं। हम अपनी बनाई कहानियों में ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं, भले ही वो झूठी हों।
और आखिर में, हमेशा सर्वश्रेष्ठ करें, पर ये राहत देने वाली बात, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ करें और आप आत्मनिर्णय, आत्मदुर्व्यवहार और पश्चाताप से बचेंगे।
हाँ, ये परफेक्शन के बोझ को हटाकर ईमानदार कोशिश पर जोर देता है। ये खुद के प्रति दयालु होने का मंत्र है।
ये विचार सुनने में तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन असली जादू तब होता है जब हम इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारते हैं। तो इन्हें असलियत में कैसे लागू किया जाए? कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ, ये जरूरी सवाल है। जैसे आत्मसंवाद को लेकर शुरू कर सकते हैं। जब भी दिमाग में वो पुरानी नकारात्मक टेप चले, मैं ये नहीं कर सकता, मैं बेवकूफ हूँ, तो पहले समझौते को याद करें, वचन के प्रति निष्ठावान।
अच्छा,
उस आवाज को पहचाने और उसे रोकें। उसकी जगह कहें, मैं सीख रहा हूँ, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, मैं काबिल हूँ।
रिश्तों में ये बहुत काम आ सकते हैं। मान लीजिए आपके पार्टनर या दोस्त ने कुछ कहा या किया जिससे आपको चोट पहुंचे, पहली प्रतिक्रिया शायद गुस्सा या दुख होगी।
हाँ, अक्सर होती है।
लेकिन दूसरे समझौते को याद करें, इसे व्यक्तिगत रूप से ना लें। हो सकता है उनका दिन खराब गया हो, फिर तीसरे समझौते का इस्तेमाल करें। धारणा न बनाएं, उनसे शांति से पूछें कि बात क्या है, इससे कितनी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं।
और काम की जगह पर गपशप से दूर रहना, पहला समझौता। फीडबैक या आलोचना को व्यक्तिगत हमला समझने के बजाय सीखने का मौका समझना, दूसरा समझौता। और हर दिन उस दिन की परिस्थितियों के अनुसार अपना सर्वश्रेष्ठ देना, चौथा समझौता। इससे ना सिर्फ माहौल बेहतर होगा, बल्कि शायद अपना तनाव भी कम होगा।
हाँ, ये छोटे छोटे कदम हैं। रोज अभ्यास करने से ये धीरे धीरे हमारी आदत बन सकते हैं, और फिर हम पाएंगे कि हम ज्यादा शांत हैं, ज्यादा आत्मविश्वासी हैं, और हमारे रिश्ते ज्यादा गहरे और सच्चे हो रहे हैं।
जब मैं सब पर सोचता हूँ तो मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमारा ज्यादातर दुख वैकल्पिक है, ये हमने खुद अपने पुराने डर भरे समझौतों से बनाया है।
हाँ, ये बात मुझे भी छू गई।
और सबसे अच्छी बात यह है कि ये समझौते बदले जा सकते हैं। ये चार सरल लगने वाले नियम वाकई जिंदगी बदल सकते हैं। खासकर अपने शब्दों के प्रति जागरूक होना, दूसरों के लिए और खुद के लिए, ये कितना बुनियादी पर कितना शक्तिशाली है।
और मेरे लिए सबसे मुक्तिदायक विचार है व्यक्तिगत रूप से कुछ न लेना। यह हमें दूसरों की राय के बोझ से आजाद करता है। सोचिए, अगर हम इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम कितने स्वतंत्र महसूस करेंगे।
बिल्कुल,
हम अपनी शर्तों पर जी पाएंगे। ये चारों समझौते मिलकर हमें डर की कैद से निकालकर प्यार और स्वतंत्रता की ओर ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। सरल है, पर शायद आसान नहीं रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना।
सही कहा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात सब बदल दे, ये एक निरंतर अभ्यास है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पाना एक रोज की साधना है। हमें धैर्य रखना होगा, खुद पर तरस खाना होगा जब हम फिसलें, और हम फिसलेंगे, और फिर से इन समझौतों को याद करके रास्ते पर लौटना होगा।
तो आज की इस ज्ञान गोष्ठी का अंतिम विचार शायद यही है। क्या हम उन अदृश्य समझौतों को पहचानने के लिए तैयार हैं? क्या हम में वो साहस है कि हम इन चार सरल लेकिन शक्तिशाली समझौतों को अपनाकर अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लें?
हाँ, ये सवाल खुद से पूछना ही शायद इस बदलाव की ओर पहला कदम है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।